पिछले संडे हमने एक अध्ययन शुरू किया था और इब्रानियों की पत्री में से कुछ देखा था, फिर हम कुरिन्थियों की पत्री में गए थे। आपसे जानना चाहूंगा कि इब्रानियों की पत्री का 5वां अध्याय के अनुसार एक विश्वासी का सियाना होने का यानी मैच्योर होने की क्या पहचान है? ओके, भले बुरे को पहचान सकते हैं या परख कर सकते हैं। वो व्यक्ति जो सियाना है, जो मैच्योर है, वो भले और बुरे की परख कर सकता है या फर्क कर सकता है, पहचान सकता है। दूसरा क्या था? वो अन्न खा सकता है, सॉलिड फूड खा सकता है। और जाहिर है जो सियाना है, जो मैच्योर है, उसकी जड़ अच्छी तरह नींव संबंधी शिक्षा में है। इब्रानियों की पत्री का 9वां अध्याय का 27वां पद में से हमने क्या सीखा था? ओके, सबको मरना है और फिर एक दिन न्याय के लिए सब खड़े हो जाएंगे, ठीक है, गुड। कुरिन्थियों की पहली पत्री का 15वां अध्याय में से हमने क्या सीखा था? 21वां पद में से एक गुप्त बात के विषय में हमने सीखा था, वो क्या था? 21 में था, इक्यावन में एक गुप्त बात जो प्रकट हुई थी कलीसिया पर, वो क्या थी? कि हम सब नहीं मरेंगे। वैसे सबको मरना है लेकिन हम सब नहीं मरेंगे, अच्छी बात है। आप लोगों को कुछ कुछ बातें याद हैं, हमेशा ध्यान रखना प्रेरितों के काम का 17वां अध्याय का 11वां पद। इस चर्च के सारे विश्वासियों को अच्छी तरह से मालूम है, जो कुछ आप विश्वास करते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। जो कुछ मैं सिखाता हूँ मैं जिम्मेदार हूँ। आप उन शिक्षाओं को अच्छी तरह से देखेंगे, खुद अपना अध्ययन करेंगे। तो अभी हम रिसरेक्शन यानी मरे हुओं का जी उठने के विषय में यानी पुनरुत्थान के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, और हमने अभी तक देखा कि हर व्यक्ति चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो एक दिन मरना होगा। विश्वासियों के लिए हमने देखा कि यदि यीशु मसीह के आने के समय में वो जिंदा है तो वो मरेगा नहीं, वो सिर्फ बदल जाएगा। और चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, सबको मरने के बाद एक दिन जी उठना जरूरी है, और जी उठने के बाद न्याय परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने सबको खड़ा होना होगा। अब वो जाने के बाद थोड़ी सी घबराहट सब में आई होगी, और अमित को नहीं हुआ, अच्छी बात है, थैंक यू। और कुछ सवाल भी आए होंगे खास करके न्याय को लेके, तो ध्यान रखना अभी हम सिर्फ पुनरुत्थान के विषय में, जी उठने के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जब ये अध्ययन खत्म होगा तो हम न्याय में जाएंगे, ठीक है। तो तब तक आपको सब्र रखना होगा, लेकिन इस अध्ययन में काफी समय लगेगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका बीपी बढ़ जाए, और सोच सोच के इसलिए आपको एक तसल्ली की बात बता देता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार को निकालिए, 3रा अध्याय खोलिए, और उसमें एक वर्ड से जो बहुत ही फेमस है, वो सब जानते हैं, रटा हुआ है, उसका 16वां पद, उसको पढ़िए। थोड़ी सी तसल्ली देने के बाद फिर हम पुनरुत्थान के बारे में देखेंगे। इस 3रा अध्याय का 16वां पद में लिखा है कि परमेश्वर ने संसार से यानी हम सब लोगों से, सिर्फ इस चर्च में बैठने वाले लोग नहीं, इस पूरी दुनिया के लोगों से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। थोड़ी सी तसल्ली है ना, कि अगर हमने विश्वास किया है तो न्याय के समय में हम नाश नहीं होंगे, ठीक है। बीपी नॉर्मल रहेगा ना, ठीक है। अब लेकिन आप भूल सकते हैं इस बात को, क्योंकि कई बार अच्छी चीजें हम जल्दी भूल जाते हैं, और घबराने वाली बातें हम थोड़ा समय के बाद भूलते हैं। इसलिए 17वां पद को भी पढ़ लीजिए। इस 17वां पद में लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार में इसलिए नहीं आया कि वो लोगों को सजा सुनाने के लिए, यीशु मसीह नहीं आया था। शायद आपको याद होगा जब आत्मा के द्वारा चलाए चलने के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर का क्या प्रचार करने के लिए आया हूँ, राज्य का प्रचार करने के लिए आया हूँ, लेकिन राज्य को लेके क्या प्रचार करने के लिए, परमेश्वर का प्रसन्न रहने का समय बताने के लिए आया। इसलिए यीशु मसीह दंड की आज्ञा सुनाने के लिए नहीं आया था। इसलिए जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, बल्कि उसमें लिखा है, क्या लिखा है, 17वां पद को पढ़िए,
परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए।
अब उस बात को ध्यान से सुनना, फिर वो किस लिए आया था, ध्यान से पढ़िए,
जगत
उसके द्वारा उद्धार पाए, जगत के पूरे मानव जाति यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए जो उद्धार पाते हैं उनके साथ क्या होगा, 18वां पद को पढ़ते हैं,
जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी।
और आप सब क्या बोलेंगे,
आमीन।
बस इतना ही, पवन फिर से पढ़िए उसको,
जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती।
उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, तो न्याय के समय में आप पर दंड की आज्ञा नहीं है।
फिलहाल इतना काफी है ना। अब आपके पास और भी सवाल आएंगे, फिर क्या न्याय होगा, फिर किस बात का न्याय होगा, वो सब कुछ हम धीरे धीरे सीखेंगे, क्योंकि ये नींव संबंधी शिक्षा है, ये हमें मालूम होना चाहिए। और जब हमें पता चल जाएगा उसके अनुसार हम क्या करेंगे, विश्वास करने से पहले क्या करेंगे, मन फिराएंगे, हम अपने पुराने विचारों को हटाएंगे, तभी तो हम विश्वास कर पाएंगे। इसलिए ये नींव संबंधी शिक्षा में सबसे पहले क्या पाया जाता है,
मन फिराना,
उसके बाद विश्वास। तो तसल्ली है ना सबको, अभी हम आगे जा सकते हैं ना। तो पर जिन्होंने विश्वास किया है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब सवाल ये आता है कि मरने के बाद जी उठना तो है, लेकिन उस और मरने का और जी उठने के बीच में क्या होगा। जो लोग मर गए हैं, जो लोग सो चुके हैं, वो क्या अभी जी उठे हैं क्या?
नहीं,
जी उठेंगे। तो मरने के बाद जीड़ने तक क्या होगा उनके साथ, वो कहां पर होंगे, किस हाल में होंगे, कब्र में होंगे। तो हमारे लिए अच्छा हो तो हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं ना, पवित्र शास्त्र में चलते हैं। आज के अध्ययन में हम क्या क्या देख पाएंगे हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कितना समय होगा, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मरे हुओं का जी उठना कब होगा, और क्या सारे मरे हुए लोग एक साथ जी उठेंगे, क्या सारे विश्वासी एक साथ जी उठेंगे। ध्यान देना, क्या सारे लोग यानी विश्वासी और अविश्वासी एक साथ जी उठेंगे। दूसरा, क्या सारे मसीह में विश्वास करने वाले विश्वासी एक साथ जी उठेंगे। हम देखेंगे, अभी आपको लगता होगा कि हम देखेंगे वचन में कि क्या होता है। और मरने के बाद इनकी मनुष्य की आत्माएं कहां चली जाती है। आपको ये तो मालूम है ना कि हमारे पास, हम जो मानव है या मनुष्य है, हमारे तीन हिस्से हैं। तस्लोनिकी पहली पत्री का 5 अध्याय का 23 पद एक बार जल्दी से आप पढ़ेंगे, ये बात आपको मालूम है, फिर भी एक बार देखना अच्छा रहता है ताकि हम बेसिक बातों को भूल ना जाए। 5:23 में लिखा है कि शांति का परमेश्वर तुम्हें यानी पूरा इंसान को यानी तुम्हारे आत्मा प्राण और देह को, हिंदी में पढ़िए पवन क्या लिखा है,
शांति का परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से,
तुम्हें पूरी रीति से, वो जो पूरी रीति से लिखा ना, इसका मतलब पूरा इंसान को, यानी एक सिर्फ आधा इंसान को या एक तिहाई इंसान को, पूरी रीति से क्या क्या है उसमें,
और तुम्हारी आत्मा
प्राण
और देह।
तो तीनों चीजों को परमेश्वर क्या करेगा,
प्रभु यीशु मसीह के आने तक
क्या करेगा, वो
पूरे
सुरक्षित रखेगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हमारे शरीर को भी वो सुरक्षित रखेगा, हमारे प्राण को भी वो सुरक्षित रखेगा, हमारी आत्मा को भी वो सुरक्षित रखेगा। कब तक रखेगा, यीशु मसीह कब आएगा, आने तक वो सुरक्षित रखेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और पद देखते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक का 2:7 को देख। 2:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को इस मिट्टी में से बनाया, या उसकी शरीर की रचना जो है पृथ्वी में से मिट्टी निकाल के उसमें से किया। 2:7 पढ़िए प्लीज।
और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा।
भूमि की मिट्टी से रचा, आदम का कौन से हिस्से को रचा होगा, उसके शरीर को। इस शरीर को परमेश्वर ने मिट्टी में से बनाया, इसलिए मृत्यु के बाद इस शरीर के लिए अवश्य है कि वो वापस मिट्टी में मिल जाए। आपके बाइबल में एक पुस्तक है सबोपदेशक, भजन संहिता और नीति वचन के बाद है वो, उसका 12:7 को देखिए। जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ मैं आपको बाइबल से दिखाते जाऊंगा। अब परमेश्वर की विधि के अनुसार शरीर जो मिट्टी से बना था वो वापस मिट्टी में मिल जाएगा, और आत्मा जहां से आया था वहां पे वापस जाएगा। 12:7, इंसान का शरीर कैसे बना था, मिट्टी से बना था, उत्पत्ति के पुस्तक का 2:7 में हमने देखा था। इसलिए उस शरीर को कहां वापस जाना होगा, मिट्टी में वापस मिलेगा, चाहे आप उसको दफनाए या उसको जलाए, वापस मिलेगा कहां पे, वो इस मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा जो है परमेश्वर की ओर से मिला था, इसलिए वापस कहां जाएगा, परमेश्वर के पास जाएगा। क्योंकि मिट्टी से बनाने के बाद क्या लिखा है, 2:7 में, और थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि, इसमें नहीं उत्पत्ति के पुस्तक में, जहां पे लिखा है कि, जहां पे लिखा था कि उसने मिट्टी से हमारे शरीर को बनाया, उसके बाद लिखा कि उसके नथनों में परमेश्वर ने क्या किया था, सांस फूंक दिया था, तब वो क्या बना। उससे पहले सिर्फ वो मिट्टी का एक पुतला जैसे था, लेकिन जब सांस होगा तो वो जीवित प्राणी हो गया। तो आत्मा और प्राण जो है परमेश्वर की ओर से है, इसलिए वापस, बल्कि बाइबल में कहीं लिखा नहीं कि प्राण के साथ क्या होगा, इसलिए मैं उसके बारे में आपको बता नहीं सकता। आत्मा के लिए साफ रीति से लिखा कि आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। अब इस शरीर को बनाने के लिए परमेश्वर ने मिट्टी इस्तेमाल किया, जो कि एक ऐसी चीज है ना जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आत्मा को हम देख नहीं सकते, प्राण को भी हम देख नहीं सकते। वो दोनों प्राण के लिए साफ रीति से लिखा नहीं है, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता, बाइबल में है नहीं, काफी छानबीन किया कहीं नहीं है। आत्मा परमेश्वर के पास वापस जाएगा। अभी फिलहाल स्पष्ट रूप से हमें इतना पता है कि मृत्यु के बाद शरीर जो है मिट्टी में मिल जाएगा और आत्मा जो है परमेश्वर के पास वापस जाता है, प्राण भी साथ ही जाता होगा, क्योंकि जब आत्मा आया था प्राण के साथ ही आया, दो के साथ में लिखा ना कि परमेश्वर ने क्या किया, जीवन का सांस फूंका तो वो एक जीवित प्राणी बन गया, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था, इसलिए आत्मा उसके अंदर है। आत्मा शायद आत्मा और प्राण एक साथ जाता होगा, 100% मुझे नहीं पता, इसलिए मैं नहीं बता रहा। अब ये लिखा है कि आत्मा वापस परमेश्वर के पास जाएगा, इसका मतलब क्या है? वो परमेश्वर के साथ रहेगा या परमेश्वर के पास जाने के बाद क्या होगा? उस बाइबल में कहीं है जब हमारा शरीर यहाँ पर खत्म हो जाता है और हमारी आत्मा जो है उसी समय परमेश्वर के सामने चला जाता है, उसके बाद क्या होगा? न्याय तो नहीं होगा ना? न्याय क्यों नहीं होगा? अभी हम थोड़ी देर में चर्चा कर चुके हैं, न्याय क्यों नहीं होगा? न्याय जी उठने के बाद होगा। फिर हमने पिछली बार देखा था ना कि हमने जो कुछ इस शरीर में रह के किया उसके अनुसार न्याय होगा, इसलिए हमें शरीर में उसके सामने खड़ा होना होगा। जब आत्मा अकेली परमेश्वर के पास सामने चली जाएगी तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? फिर क्या करेगी वो आत्मा? ये सही है कि वो आत्मा जो है पुनरुत्थान या जी उठने तक, शरीर का जी उठने तक, फिर से जीवित होने तक वो वेट करेगी, लेकिन कहां पे करेगी? बाइबल में है, हम चलते हैं। इस बारे में हम सब कुछ नहीं जानते। आपको व्यवस्था विवरण का 29वां अध्याय का 29वां पद याद होगा? यस, गुप्त बातें परमेश्वर के वश में हैं, लेकिन जो कुछ उसने हम पर जाहिर किया है वो हमारे लिए, इसलिए ऐसा है कि कुछ कुछ परमेश्वर ने हमें बताया है ताकि हमें मालूम हो, लेकिन सब कुछ नहीं बताया। बाइबल में कुछ ऐसे पैसेजेस हैं जहां से हमें मालूम चल जाता है कि मरने के बाद आत्मा जो परमेश्वर के सामने जाती है उसके बाद उसका क्या होगा और किस हाल में होगा। साफ रीति से कहूं तो बाइबल के अनुसार विश्वासी लोग, जो धर्म, जिनको पवित्र शास्त्र धर्मी जन कहते हैं, वो एक अलग जगह पे जाएंगे और जो अधर्मी है वो एक अलग जगह पे जाएंगे। यशया नबी की पुस्तक का 14वां अध्याय, 14th chapter of the book of Isaiah, 14वां अध्याय का 9वां और 10वां पद को पढ़िए। अब इससे क्या पता चल जाता है? ये सब आत्माएं हैं जो इस संसार से, उनका जीवन खत्म हो गया, शरीर को उन्होंने छोड़ दिया और अधोलोक में पहुंच गए। तो हमने ये देखा था कि आत्माओं को परमेश्वर के पास जाना है, लेकिन परमेश्वर के सामने जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे सिर्फ उस समय इतना फैसला हुआ कि ये आत्माएं कहाँ जाएंगी, लेफ्ट को जाएंगी या राइट को जाएंगी, ऐसा लिखा नहीं है बाइबल में। यानी वो धर्मी होंगे उस स्थान में जाएंगे या अधर्मी होंगे उस स्थान में जाएंगे, सिर्फ इतना ही फैसला हो सकता है, क्योंकि ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये मृत्यु के बाद की बातें हैं। वहां पे इस समय कोई आ रहा है, कोई मतलब किसी की, यानी किसी की मृत्यु हो गई हुई है और एक राजा था और वो शरीर के बिना सिर्फ आत्मा प्रवेश करने वाली है, शरीर पृथ्वी पे सड़ रहा होगा उस समय, और वहां पर जो आत्माएं हैं यानी वो होश में हैं और आने वाले को वो पहचान सकती है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम चलता कि पृथ्वी में क्या हो रहा है। लेकिन पृथ्वी में जब वो थे उस समय की कुछ बातें उनको याद है, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम्हारा हाल भी हमारे जैसे हो गया, इसका मतलब उन आत्माओं को पृथ्वी की कुछ बातें याद है। मैं सही कर रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? आप वर्ष 9 और 10 को पढ़ने के बाद मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, आप उन बातों को देख पा रहे हैं कि नहीं, आप देखिए। इनमें से कोई भी बात को आपको आंख बंद करके स्वीकार करने की जरूरत नहीं, आप खुद जाके घर में जाके एक बार अध्ययन करेंगे 9वां और 10वां पद को, आप देखेंगे कि पृथ्वी में क्या हो रहा है इनको नहीं पता, लेकिन सामने जो आत्मा आई है उन्हें बाकी आत्माएं पहचानती है और
उनकी बातों से ये पता चल जाता है कि पृथ्वी के उनके जीवन की कुछ बातें उनको याद है और उनका व्यक्तित्व जो है वो खत्म नहीं होता, इसलिए वो एक दूसरे को पहचान पा रहे हैं, जबकि वो बिना शरीर में है, सिर्फ आत्मा है। अब वो हमारे लिए संकल्प करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हमने अभी तक किसी आत्मा को अकेले नहीं देखा, बिना शरीर का नहीं देखा, राइट, क्योंकि वो पृथ्वी में नहीं होती। शरीर के बिना बिना आत्मा जो है पृथ्वी पे नहीं रह सकती, इसलिए हम देख नहीं पाते। लेकिन हम बहुत सारी कहानियां सुनते रहते हैं, वो इसके आधार पर है। जो पृथ्वी में नहीं हो सकता, दुष्ट आत्माएं उसका फायदा उठाती है और लोग कहानियां बनाते हैं। तो मरे हुए लोगों की आत्माएं कभी भी पृथ्वी में नहीं आ सकती, उनको अधोलोक में रहना होगा और जिस जगह पर वो है उस जगह की अवस्था उनको मालूम है, क्योंकि उन्होंने कहना कि क्या तुम्हारा भी हाल हमारे जैसे हो गया, तो हमारा हाल इतना अच्छा नहीं है। अगर अच्छा होता तो वो दूसरी रीति से बात करते ना, आखि हमें खुशी है कि तुम भी हमारे जैसे हाल में आ गए, ऐसा नहीं बोला। बातों से ये मालूम चलता है कि ये जगह जो है धर्मी लोगों की नहीं है। इन सारी बातों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये अधर्मी लोगों के विषय में बात हो रही है। आप थोड़ा सा और अध्ययन कर सकते हैं, एजीकील की पुस्तक में 32वां अध्याय में है, 32वां अध्याय का 17 से लेके 21 तक का पढ़िए, यही बातें आपको वहीं पे मिलेगी। थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिल सकती है। अब हम चलते हैं नया नियम में, पुरानी बातों को छोड़ देते हैं, अब नए नए नियम में चलते हैं। वहां पर लाजरस नाम का एक व्यक्ति है जिसको आप सब लोग जानते हैं, और एक धनवान भी था, दोनों मर गए, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। नहीं मतलब उनका यहाँ का वास जो है वो खत्म हो गया, तो वो दोनों परमेश्वर के सामने पहुंच गए। परमेश्वर की विधि के अनुसार दोनों की आत्माएं जो है परमेश्वर के सामने पहुंच गई। फिर फैसला हुआ कि कौन कहां को जाएगा, दोनों अपने अपने स्थान पे चले गए। अब हम पढ़ते हैं उसको 19वां पद से लेके 31 तक पढ़िए, एक जन आप में से पढ़ेंगे हिंदी में और बाकी लोग ध्यान से देखेंगे। 16वां अध्याय बोला था ना मैंने, 16 का पत्री नहीं, लूका का सुसमाचार, सॉरी मैंने बोला नहीं शायद आपको कहां पर है, लूका रचित सुसमाचार का 16वां अध्याय का 19 से लेके 31 तक है, जल्दी से पढ़ेंगे।
एक धनवान मनुष्य था जो बेचने कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, और लाजर नाम का एक कंगाल दावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, और हम कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया।
अब ध्यान रखिए, ये जो कंगाल या ये गरीब इंसान जो था उसके लिए लिखा है कि जब वो मर गया उसको, यानी उसकी आत्मा को, उसके शरीर को नहीं, शरीर पृथ्वी में मल जाता ना, तो उसकी आत्मा को स्वर्गदूत कहाँ पहुंचाया, तो जिस जगह में धर्मी लोग जाते हैं उसके लिए बाइबल हमें बताती है उस जगह का नाम है इब्राहिम की गोद, द बोसम ऑफ अब्राहम, और कुछ परमेश्वर नाम नहीं बताता हमने फिलहाल, वहां पहुंचा दिया। उसके बाद की बातें चर्चा जो ये हो रही है कि वहां पर उसका हाल अच्छा था, उसकी आत्मा का, और वो धनवान जो मर गया उसके लिए नहीं लिखा है कि वो इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया गया, वो भी एक दूसरी जगह पर है। हम पढ़ सकते हैं, वे धनवान भी मरा और गाड़ा गया, लेकिन उसके लिए नहीं लिखा है कि स्वर्गदूत ने उसको इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, स्वर्गदूत ने उसको कहीं और पहुंचाया, लिखा है कि अब स्वर्गदूत लेके एस्कॉर्ट मिला है नहीं मिला, ये नहीं लिखा है। हाँ, विश्वासियों के लिए, उस समय के विश्वासियों के लिए लिखा है कि एस्कॉर्ट्स आते हैं, स्वर्गदूत आते हैं, ले जाते हैं, और इब्राहिम की गोद, उस जगह का नाम है इब्राहिम की गोद, ठीक है, वहां पे उसको पहुंचाते हैं। जो अधर्मी है, जो जिन्होंने यहोवा परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उनके लिए लिखा है कि वो मर गया और वो गाड़ा गया, उसके बाद विद एस्कॉर्ट या विदाउट एस्कॉर्ट नहीं पता मुझे, लेकिन वो उस जगह पे उसके लिए जो नियुक्त जगह है वहां पर वो पहुंचा दिया गया। उस जगह का नाम क्या है, अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए, तो वहां का हाल कुछ और है। अभी ध्यान रखना, अभी न्याय नहीं हुआ है, अभी तो रेस्ट पीरियड आत्माओं के लिए, लेकिन अधर्मी लोगों की आत्माओं का हाल थोड़ा सा ऐसा है, वहां पे थोड़ी सी तकलीफ है आत्माओं को, शरीर नहीं है वहां, सिर्फ आत्मा है, आत्मा को थोड़ी सी तकलीफ है, और उस तकलीफ में रहकर उसने लिखा है कि उसने आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा और पहचाना, लिखा नहीं है लेकिन लिखा कि लाजर को देखा, इसका मतलब उसने पहचाना लाजर। चाहे आप अधोलोक में रहे या इब्राहिम की गोद में रहे, आत्मा एक दूसरे को पहचान सकती है, ये हमने एशिया नबी की पुस्तक में भी देखा था। यशायाह नबी के पुस्तक में सिर्फ अधर्मी लोगों के बारे में देखा था, यहाँ पर हम दोनों के बारे में देख रहे हैं। आप लोग सब मेरे साथ है ना अभी? ओके, कुछ मिसिंग तो नहीं है ना? कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, तब उसने पुकार कर कहा, थोड़ा सा दूर है इसलिए पुकारना पड़ा, या हो सकता है कि मोटा सा स्क्रीन हो शीशे का, मैं पृथ्वी की भाषा में बोल रहा हूँ, ठीक है? एक दूसरे को आप देख सकते हैं दूर में, लेकिन आवाज वहां तक पहुंचने के लिए पुकारना होगा जोर से। तो उसने जोर से पुकारा, पुकारा लिखा, जोर से नहीं लिखा, तो हम डिलीट करते हैं उसको, जो हम मिलाना नहीं चाहिए कोई वर्ड, ठीक है? तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को बेच दे, ताकि वे अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर, विस्तार रूप से प्रार्थना कर रहा है वो, ठीक है? जैसे आजकल हम लोग करते हैं वैसे, सारे डिटेल में बता रहा है इब्राहिम से मुझे क्या चाहिए। मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। तो इतना पता चलता है कि अविश्वासियों की आत्मा जहां पर है वहां पर थोड़ी सी गर्मी है और प्यास लगती है। अब मैं अभी तक गया नहीं इसलिए मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, थोड़ी एक ज्यादा है और मैं जाने का उम्मीद भी नहीं करता वहां पर। मेरा तो निश्चय है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने विश्वास नहीं किया, जो हमारे अपने हैं। हम बहुत प्यार करते हैं ना अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, लेकिन एक रियलिटी देख लीजिए, अगर उन्होंने उद्धार नहीं पाया वो यहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद वो जी उठेंगे, फिर उनका न्याय भी होगा। लेकिन न्याय से पहले, न्याय होने से पहले भी उनका हाल ये है। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपके अंदर गिल्ट फीलिंग लाने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक सच्चाई है। हमारे अपने लोग जिन्होंने अभी तक विश्वास नहीं किया, जिनको अभी तक हमने भी ठीक से नहीं बोला, क्योंकि हम उनको ठेस पहुंचाना नहीं चाहते या दुख पहुंचाना नहीं चाहते, उनका हाल ये होगा। एक एस्केप रूट आपको बताता हूँ, बताऊँ? आप ये प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर मेरे अंदर तो हिम्मत है नहीं बोलने की, किसी और को भेज दे। रोज ये तो प्रार्थना कर सकते हैं ना, ये तो आप कर सकते हैं ना कि परमेश्वर किसी और को भेज दो उनके पास, ताकि वो उनको सुसमाचार सुनने का मौका मिले। सुनने के बाद वो, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो फैसला भी करे, ठीक फैसला करे। ये तो प्रार्थना कर सकते हैं ना, ताकि हमारे अपने लोग इस जगह पे ना जाए। ये मैं खुद भी करता हूँ। ओके, इब्राहिम से बात हुई, इब्राहिम ने जवाब दे दिया। 25वें पद में लिखा है, परंतु अब्राहम ने कहा कि हे पुत्र, देखो कितने प्यार से बात करता है अब्राहम वहां से, यानी परमेश्वर का नेचर आपको इसमें दिख रहा है ना। इब्राहिम बड़े मजे में बैठा है वहां पे, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन उसने गुस्से में बात नहीं करी, बहुत प्यार से बात किया। हे पुत्र स्मरण कर, अब देखिए इसका मतलब हम याद कर सकते हैं, पृथ्वी में जब हम थे उस समय की कुछ कुछ बातें हम याद कर सकते हैं, सारी बातें याद रहती है कि नहीं, लेकिन कुछ बातें हमें जरूर याद होगी इन पदों के अनुसार। अब्राहम ने कहा कि स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और फिर क्या हुआ था, और लाजर के बारे में तुझे पता है, क्योंकि वो तेरी डेवड़ी में बैठा रहता था, तुझे पता है अच्छी तरह, उस समय तुमने कुछ नहीं किया उसके लिए, परंतु अब वे यहाँ शांति पा रहा है। इसका मतलब विश्वासी लोग जहां पर भी जाते हैं, यानी उनकी आत्मा जहां पर भी जाके वास करती है, उस जी उठने के शरीर के जी उठने तक वहां पर शांति है, वहां पर आराम है, जान के खुशी है, तो डरने की जरूरत नहीं है। यानी रोमियो की पत्री का 10वां अध्याय का 9वां पद के अनुसार वहां पर लिखा है ना कि तू निश्चय उधार पाए, यानी कि शायद परमेश्वर की इच्छा रही था, ऐसा नहीं है ना, सबको पता है ना। तो जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, निश्चय हमारा उद्धार हुआ है, हमें बीच बीच में देखने की जरूरत नहीं पके में हुआ है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार हो चुका है, नहीं, अगर हमने विश्वास किया है तो निश्चय हमारा उद्धार हो चुका है, और मृत्यु के बाद शरीर यहाँ पे सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा ऐसी जगह पर पहुंच जाएगी, फिर हमारी आत्माएं जो है इंतजार करेंगी यीशु मसीह का आने का, जानकर खुशी है। तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कुछ भी परमेश्वर की तारीफ करनी चाहिए हमें कि निश्चय है उद्धार जो है वो निश्चय है, उसमें कोई शक नहीं है। इन सब बातों को छोड़, अब उसने कहा कि मैं तड़प रहा हूँ, लेकिन अब्राहम ने क्या कहा कि परंतु अब यहाँ लाजरस जो है यहाँ पर शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। 26वें पद में लिखा है कि इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे नहीं जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास ना आ सके। तो दो अलग अलग जगहें हैं जहां पर आत्माएं जाके इंतजार करेंगी, एक धर्मी जनों की जगह और एक अधर्मियों की जगह, और दोनों के बीच में बहुत बड़ी खाई है
जिसको कोई पार नहीं कर सकता, यानी इब्राहिम की गोद में से उठकर कोई वहां नहीं जा सकता और वहां से उठकर कोई यहाँ नहीं आ सकता कि थोड़ी देर में एसी का हवा लेके आता हो, ऐसा नहीं हो सकता। अधर्मियों के लिए या अगर ज्वाला है, गर्मी है, तो धर्मियों के लिए एसी होगा ना, हमारी पृथ्वी की भाषा में, या कूलर होगा, जो भी होगा वहां पे आराम है। अब ध्यान रखना, ये अंतिम न्याय नहीं है, उससे पहले की बातें हैं। अभी जी उठना बाकी है, अभी शरीर का फिर से जी उठना, फिर आत्मा के साथ मिलाना, फिर परमेश्वर के सामने खड़ा होना, इसके बाद अंतिम फैसला होगा कि अब ये लोग कहां जाएंगे। वहां तक हम पहुंचे नहीं है। ये बातें क्लियर है आप सबके लिए। और इस जगह को क्योंकि इब्राहिम की गोद बताया गया है, तो जाहिर है कि वहां पर वही लोग जाएंगे ना जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने परमेश्वर की बातों को माना और उसके अनुसार चला, वही पहुंच पाएंगे ना। इसलिए उस जगह को शायद इब्राहिम की गोद कहा। तो अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि मृत्यु के बाद शरीर के साथ क्या होगा और आत्मा कहाँ चली जाएगी, और ये उन लोगों के बारे में है जो यीशु मसीह के आने से पहले जीवित थे। अभी तक जो दो उदाहरण हमने देखे हैं, यशायाह नबी की पुस्तक और लूका रजिस्टर समाचार, ये सब यीशु मसीह के क्रूस पे जाने से पहले की बातें हैं। अब यीशु मसीह के क्रूस में जाने के बाद जो लोग विश्वासी होंगे उनके साथ क्या होगा, उनका भी ऐसा ही होगा या थोड़ा सा फर्क है, कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस है उनको? सबसे पहले अमित हंसना शुरू किया, एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस। बाइबल में कभी आपने ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? ध्यान नहीं आ रहा। तो हम शुरू करते हैं हम यीशु मसीह से, क्योंकि बाइबल के अनुसार यीशु मसीह मरे हुओं से जी उठने वालों में पहलौठा है, यानी सबसे पहले मरने के बाद सिर्फ यीशु मसीह जी उठा है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, इससे पहले कि आप सवाल लेके घूमे आपको बताता हूँ, यीशु मसीह ने कई लोगों को जीवित किया था, लाजरस एक दूसरा लाजरस, ठीक है, प्रेरितों ने भी बहुत सारे लोगों को जीवित किया, और आज भी मसीही लोगों के द्वारा लोग मृत्यु के बाद जीवित किया जाते हैं, लेकिन बाइबल उन लोगों के लिए पुनरुत्थान शब्द इस्तेमाल नहीं करती। वो जीवित हो गए, कुछ समय और जिंदा रहे, इसके बाद मर गए। यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो मरने के बाद जी भी उठा, यानी जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो अलग शब्द है, इसका मतलब है कि वो फिर से उस शरीर से जुड़ गया, वो शरीर फिर से वापस मिल गया, एक नया शरीर मिल गया। हम देखते हैं बदन संहिता 16 का 8 को देखते हैं, 8 से 11 तक, बदन संहिता 16 का 8 से 11 तक पढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को देखेंगे। बदन संहिता 16 का 8 कितना समय हुआ,
आप पढ़िए 8 से 11 तक पढ़िए।
इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट अनंत की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है।
ये जो हम पढ़ रहे हैं ये दाऊद ने लिखा जरूर है, लेकिन दाऊद ने अपने बारे में नहीं लिखा। हमें कैसे मालूम है? प्रेरितों के कामों में दूसरा अध्याय का पहला प्रचार करते हुए पत्रस ने इन्हीं पदों को कोट किया था, और दूसरा अध्याय का 25 से लेकर 28 तक आप लिख सकते हैं, घर जाके पढ़ सकते हैं, यहाँ पत्रस ने इन पदों को बोला था। उसके बाद पौलुस ने भी 13वां अध्याय में इन पदों को बोला था, और दोनों ने साफ साफ ये कहा कि ये यीशु मसीह के विषय में है, यानी दाऊद यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में, यीशु मसीह के गाड़े जाने के विषय में और फिर जी उठने के विषय में भविष्यवाणी कर रहा था, और उसमें लिखा ना कि तू मेरे शरीर को, मेरे प्राण को अधोलोक में सड़ने नहीं देगा। ये लिखा छोड़ेगा नहीं या सड़ने नहीं देगा, ना छोड़ेगा वहां पे, यानी और सड़ने नहीं देगा, यानी उसके शरीर को, शरीर तो अधोलोक में जाता नहीं, शरीर तो पृथ्वी में जाता है, लेकिन प्राण और आत्मा, यहाँ पे प्राण लिखा है, हो सकता है प्राण भी वहीं चला गया हो, उसको अधोलोक में छोड़ेगा नहीं, यानी वहां से निकालेगा। और पत्रस दूसरा अध्याय में बहुत साफ शब्दों में कहता है कि ये बातें दाऊद ने लिखी जरूर है, लेकिन दाऊद के लिए नहीं, क्योंकि दाऊद मर भी गया और गाड़ा भी गया और उसका कब्र जो है हमारे बीच में है। और वो ये भी कहता है कि दाऊद जो है स्वर्ग पे नहीं चढ़ा, यानी सारे मिला के हमें स्पष्ट रूप से मालूम चल जाता है कि ये यीशु मसीह के लिए है। यीशु मसीह के मृत्यु के बाद 3 दिन का जो समय है, उस समय यीशु मसीह का शरीर उस कब्र में रहा जरूर है, आत्मा जो है अधोलोक में गया, जहां पे सबको जाना है। यीशु मसीह को क्यों जाना पड़ा? क्योंकि हम भी वहीं जाएंगे। उस जगह को परमेश्वर एक ही नाम देता है, अधोलोक, और उसमें दो अलग अलग जगह है एक धर्मी जन के लिए और एक अधर्मी के लिए। जो हमारे लिए है उसको फिलहाल हमें मालूम है इब्राहिम की गोद कहा गया है, दूसरी जगह के लिए कोई नाम नहीं है, उसका नाम सिर्फ दो लोग है। शियोल जो है हिब्रू लैंग्वेज में है, इब्रानी में है, SHEOL शियोल जो है वो हिब्रू है। प्लेन इंग्लिश में इसको ग्रेव कहते हैं या हेल कहते हैं। हेल वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, वो नहीं है, ये वाला हेल। लूका के सुसमाचार में आपको 23वें अध्याय में आपको मालूम है ना कि यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था उसके साथ दो और भी जन थे, बल्कि बाइबल के अनुसार चार जन थे। उनमें से एक ने मन फिराया था, यीशु मसीह से ये विनती किया था कि प्रभु तू जब अपने राज में आएगा तो मुझे भी याद करना। तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा था, 23वें अध्याय में चलते हैं, उसका 43वें पद को पढ़ते हैं। वहां पे यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ कहां पे होगा, स्वर्ग लोक में होगा। कहां पे होगा, 23 का 43वें पद में है। इंग्लिश में मोस्टली ट्रांसलेशन में पैराडाइज लिखा होगा, इंग्लिश में पैराडाइज ही लिखा ना। अब ध्यान रखिए यीशु ने ये नहीं कहा कि तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, मैं स्वर्ग लोक में होगा। Okay? स्वर्ग और स्वर्ग लोक में थोड़ा सा फर्क है। तो इस जगह का दूसरा नाम है स्वर्ग लोक, एक नाम है इब्राहिम की गोद, दूसरा नाम है स्वर्ग लोक। वहां पे स्वर्ग समान कुछ बातें होगी, कम से कम इतना बताया कि वहां पे आराम है। और यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अब आप याद करके बताइए, चोरों की मृत्यु पहले हुई थी या यीशु की मृत्यु पहले हुई, किसकी हुई थी पहले? राइट, नीरू सही बता रही है। हड्डी तोड़ने के लिए आए थे तो चोरों की हड्डी तोड़ी गई थी क्योंकि वो उस समय जीवित थे। यीशु मसीह के पास आया तो क्या देखा, वो मर चुका है। तो पहले किसकी मृत्यु हुई, यीशु मसीह की मृत्यु हुई। इसका मतलब उस चोर की आत्मा जब स्वर्ग लोक में पहुंचा उसे स्वागत करने के लिए वहां पे कौन था, यीशु मसीह स्वयं थे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ना तू मेरे साथ होगा। तो पहले यीशु मसीह को जाना जरूरी था ना। आप सहमत है मुझसे, नहीं तो भी कोई फर्क नहीं, आप दोबारा अध्ययन कर सकते हैं। बाइबल स्टडी इस तरह की जाती है, आप सारी बातों को देखते हैं फिर पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है कुछ बातें, पुरानी बातें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ना कि पवित्र शास्त्र क्या नहीं हो सकता, भूल गए हम सब पढ़ के, पवित्र शास्त्र की कोई भी बात नहीं गलत नहीं, वो तो हमें मालूम है। यीशु मसीह ने क्या कहा था, टल नहीं सकती, यानी जो कुछ पवित्र शास्त्र में है वो पूरा होगा। यीशु मसीह ने कहा कि आज मैं तुमसे कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो जरूरी था कि यीशु मसीह पहले मरे और पहुंच जाए ताकि जब वो व्यक्ति आए यीशु मसीह उसका स्वागत कर सके। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तू पहुंच जाएगा और मैं भी तेरे पीछे आऊंगा, कि तू मेरे साथ होगा, यानी कि मैं तेरे साथ होऊंगा। पवित्र शास्त्र में एक जगह यीशु मसीह ने यह भी कहा था, एक जगह कहा था कि पवित्र शास्त्र की कोई भी बात टल नहीं सकती। यीशु मसीह ने यह भी कहा था ना कि पवित्र शास्त्र की एक एक बात, यहां तक कि जो बिंदी और मात्रा हम डालते हैं ना हिंदी में, वो तक पूरा होगा। इसका मतलब पवित्र शास्त्र में जो हम पढ़ते हैं ना उसको पढ़ के ऐसे हम उसको टाल नहीं सकते कि चलो ये इतनी, नहीं नहीं, एक एक चीज पूरी होगी। आप गॉस्पल्स को क्या बोलते हैं, हम सुसमाचार। आप चार गॉस्पल्स को पढ़ने के बाद पुराना नियम पढ़ना शुरू कीजिए, आपको दिखाई देगा कि एक एक बात बहुत ही बारीकी से पूरी हुई है। इतना महान परमेश्वर है हमारा, परमेश्वर अपनी बातों को याद रखता है। ऐसे नहीं कि परमेश्वर ने कहा और भूल गया, चलो अच्छा मैंने ऐसा बोला था, एक एक बात पूरी हो जाती है। बार बार आप मत्ती रचित सुसमाचार और योहन्ना के सुसमाचार और लूका के सुसमाचार, चारों में आप पढ़ेंगे, बस इसमें ज्यादा पढ़ेंगे, ये यूं इसलिए हुआ ताकि वो भविष्यवाणी पूरी हो जाए। यहाँ तक कि यीशु मसीह का एक गधे पर बैठना, एक बार एक गधे पर बैठना और एक बार एक गधे के साथ उसके बच्चे बच्चा भी था, दोनों के दो बार यीशु मसीह आए ना यरूशलेम में, पता नहीं आया कि नहीं आया। चलो पढ़िए पढ़िए, ये सब बारीकी से पूरी हुई है। इसका मतलब जो कुछ हम आगे पढ़ेंगे वो सब भी पूरी तरह पूरी होगी। हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि ये होगा क्या, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। यीशु मसीह ने जो कुछ कहा, हमें मालूम है कि यीशु मसीह की मृत्यु के बाद शरीर जो है कब्र में रखा गया था, आत्मा उस जगह पहुंच गई जिसको स्वर्ग लोक कहते हैं, चोर की आत्मा भी वहां पर पहुंच गई, उसका स्वागत हुआ। उसके बाद यीशु मसीह की आत्मा कहां चला गया,
परमेश्वर के पास, पिता के पास जाना
था। ओके ओके, उससे पहले नहीं, आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। मरियम ने जब यीशु को देखा था, यीशु को किस साल में देखा था, यीशु की आत्मा को देखा था या शरीर में देखा था, तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका था, रिजरेक्शन हो चुका था। रिजरेक्शन के बाद वो पिता के पास गए, लेकिन 3 दिन और 3 रात शरीर कब्र में रहा, आत्मा हमें मालूम है कि स्वर्ग लोक गया, और उसके बाद और भी कहीं गया यीशु मसीह, गया कैसे पता है?
राइट प्रचार किया है। तो हम चलते हैं पत्रस की पहली पत्री का तीसरा अध्याय 18, 19 और 20।
इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी बचा दिया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न माना जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए।
तो यीशु मसीह पहले मरने के बाद यीशु मसीह की आत्मा उस स्वर्ग लोग या पैराडाइज या इब्राहिम की गोद उस जगह पे गए, उसके बाद फिर और नीचे गए। तो बाइबल के अनुसार ये ऊपर नीचे है। कैसे पता है? लिखा है कि वो वहां पे गया, वहां पे प्रचार किया उन आत्माओं को जो कैद में थे, उसके बाद फिर वापस स्वर्ग लोग में आया। टाइम पूरा हो गया, यीशु मसीह का शरीर आत्मा से जुड़ गया क्योंकि 72 घंटे के बाद उससे ज्यादा यीशु मसीह को वहां पर रहने की जरूरत नहीं थी। इफिसियों के पत्री में चलते हैं, 4 अध्याय में है ना, इफिसियों के पत्री का 4:9-10 पढ़िए। इफिसियों के पत्री
और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया।
तो यीशु मसीह पृथ्वी के सबसे निचले स्थान में गया यानी जहां पर अधर्मी लोगों की आत्माएं हैं वहां तक चला गया। इसलिए मुझे हमें पता है कि वो सबसे नीचे है, फिलहाल इतना हमें मालूम है। अब इस समय के विश्वासियों के साथ क्या होगा? उनकी आत्माओं के साथ वही होगा जो उस समय के विश्वासियों के साथ हुआ था या उससे हटकर कुछ होगा, एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस होंगे नहीं होंगे वो हम किसी और संडे देखेंगे। क्योंकि तो अभी तक हमने क्या देखा है, सब मनुष्य को एक दिन मरना जरूरी है, मरने के बाद वो जी उठेंगे, उसके बाद उनका न्याय होगा। विश्वासियों के लिए जो मसीह में विश्वास करते हैं उनके लिए लिखा है कि यीशु मसीह के आते समय अगर वो जीवित है उनको मरने की जरूरत नहीं, उनके शरीर बदल जाएंगे। हमने ये भी देखा कि जो धर्मी लोग हैं जो विश्वासी हैं उनकी आत्माओं को एक शांति की जगह मिल जाती है मृत्यु के बाद जहां पर वो आराम से रह सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं जी उठने का। लेकिन जो लोग अधर्मी हैं उनको एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां पर बहुत तकलीफ है, इतना पता है। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, यानी जब हम मर जाएंगे या अगर यीशु मसीह के आने में देर हुई तो हम मर जाएंगे तो हमारा शरीर इस पृथ्वी में मिल जाएगा लेकिन हमारी आत्माएं उस जगह पर चली जाएंगी जहां पर आराम है, जहां पर तकलीफ नहीं है। लेकिन हमारे लिए कोई एक्स्ट्रा है प्रिविलेजेस है वो हम अगली बार देखेंगे, यहां पर हम रुक जाते हैं।